नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, दो राज्यों में मुख्यमंत्री भी तय हो चुके हैं, बाकी 3 राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का आलाकमान मुख्यमंत्री तय करने के मामले में जुटे हैं और शायद कुछ दिनों में कांग्रेस की मीटिंग भी होगी, उसमें वो आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठेंगे। इसी बीच आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और अध्यक्ष और प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय में मिलकर आगे की रणनीति और इस चुनाव का परिणाम का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण में कुछ बातें जरूर आएंगी जो सबको पता है। खास करके विश्लेषण में एक बात जरूर आएगी जिसके बारे में काफ़ी चर्चा भी हो चुकी है और हो रही है। वैसे हम सबको पता है कि राजस्थान में बीजेपी को 73 सीट्स मिले और वहीं 38.8% मतदान मिला। वहीं कांग्रेस को 99 वोट सीट मिले और 39.3, मतलब फ़र्क देखिए, बीजेपी को 38.8 और कांग्रेस को 39.3, इतना ही फर्क है, लेकिन सीटों में बहुत बड़ा फर्क है। ये पहले भी हुआ है, अनेक चुनावों में हुआ है, आगे भी होते रहेगा, क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के मामले में ये हो सकता है। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ बीजेपी को ज़्यादा वोट मिले, परंतु अन्य ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां कांग्रेस को कुछ वोट ज़्यादा मिले। लेकिन सबसे अहम बात मध्य प्रदेश की है, जहां बीजेपी को 109 सीट मिली और कांग्रेस को 114, परंतु बीजेपी को 41% वोट मिले और कांग्रेस को सिर्फ 40.9% वोट मिले। यानी कांग्रेस से ज़्यादा परसेंटेज वोट मिलने के बावजूद भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 109 सीट मिले हैं। छत्तीसगढ़ की बात अलग है, जहां बीजेपी को 15 सीट और 33% मत मिले और कांग्रेस को 68 सीट्स और 43% मत मिले हैं। अन्य राज्यों में अलग विषय है, परंतु मध्य प्रदेश की बात देखिए। थोड़ा सा मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 10 ऐसे सीट हैं जहां पर बीजेपी को कितना मिला है। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के बीच का हार जीत का फैसला करने में कितने वोटों का फर्क रहा। ग्वालियर दक्षिण बीजेपी 121 वोटों से हारी है। सुवासरा में बीजेपी 350 वोटों से हारी है। जबलपुर उत्तर क्षेत्र में 578 वोटों से हारी है। राजनगर में 732 वोटों से हारी है। जरोरा में 511 वोटों से हारी है। कुल मिलाकर 10 ऐसे सीट हैं जहां पर मध्य प्रदेश में बीजेपी को 1000 वोटों से कम सीटों में वो अपना सीट हारी है और कम से कम 70% मध्य प्रदेश के सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुत कम वोटों से बीजेपी हारी है। और अगर ये हिसाब से अगर देखेंगे तो यदि बीजेपी को जितने मत मिले उससे केवल 4,337 वोट और मिलते तो बीजेपी को 115 सीट मिलती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक है कि जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं, आखिरी कड़ी को जोड़ने वाली बात, यानी बीजेपी के उस कार्यकर्ता को घर घर से अपने बूथ प्रमुख के नाते मतदाताओं को घर से निकालकर मतपेटी तक लाने की बात चली, ये नहीं कर पाए। 4,337 ऐसे लोगों को बीजेपी लाने में असमर्थ रही और चुनाव हार गई, एक प्रदेश हार गई। ये बीजेपी की मध्य प्रदेश की स्थिति है। कम अधिक मात्रा में यही स्थिति राजस्थान में भी है। छत्तीसगढ़ की बात अलग है, परंतु एक अपने आप में एक अलग विषय है। इसमें एक और अजीब बात यह है कि 2015 के बाद, हालांकि 2013 में यह एक्ट पास हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इलेक्शन कमीशन को कहा कि प्रत्येक ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में, जैसे कैंडिडेट्स के नाम हैं, प्रत्याशियों के नाम हैं और उनका सिंबल है, वैसे ही एक और नाम होना चाहिए, उसका नाम है नोटा, नन ऑफ द अबव। यानी मतदार जो है उसको एक और चॉइस देना चाहिए। जैसे आप बीजेपी, कांग्रेस या अन्य किसी दल को चुन सकते हैं, किसी उम्मीदवार को चुन सकते हैं, वैसे ही आपको ये भी अधिकार है कि आप ये कह सकते हैं कि मुझे ऊपर जितने नाम हैं उनमें से कोई नहीं चाहिए, कोई अन्य नहीं, नोटा, इसका प्रोविजन किया गया। इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट को कहा कि इसमें दिक्कतें हो सकती है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखी। उस समय पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज नाम की जो संस्था है, जो अनेक वर्षों से ये कहती आ रही है कि चुनाव कभी होना ही नहीं चाहिए, जो कभी कभी इस तरह की भी बात करते रहे कि इस देश में एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, जो कम्युनिस्टों की भाषा बोलते हैं, जो मार्क्सिस्टों की भाषा बोलते हैं, जो माओवादियों की भाषा बोलते हैं, जो नक्सलवादियों की भाषा बोलते हैं, ऐसी भाषा बोलने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि नोटा होना ही चाहिए, ये उनका आग्रह था। खैर, केवल उनके कारण नहीं, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार मिलना चाहिए लोगों को, वोटर को, ये अधिकार मिला। परिणाम क्या हुआ? 2014 के लोकसभा चुनाव में 1% लोगों ने नोटा का उपयोग किया, लेकिन वही इस बार 2018 के चुनाव की परिस्थिति देखिए। 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में 1.3% इन लोगों ने नोटा को पसंद किया, वहीं सीपीएम को मिला 1.3% वोट, समाजवादी पार्टी को मिला 0.2, आम आदमी पार्टी को मिला 0.4, राष्ट्रीय लोकदल को मिला 0.4। मतलब इन सभी दलों को जितने वोट मिले उससे अधिक वोट नोटा को मिला। तेलंगाना में एनसीपी ने कंटेस्ट किया, 0.2% मिले, सीपीएम को 0.4% मिला, सीपीआई को 0.4% मिला और नोटा को मिला 1.1%। ये 1.1%, 1.3%, ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। छत्तीसगढ़ में 2.0%, मध्य प्रदेश में 1.4%, मिजोरम में 0.5%, राजस्थान में 1.3%, तेलंगाना में 1.1%, ये नोटा को मिला। यानी 2% 0.0 लोगों ने छत्तीसगढ़ में कहा कि हमें ऊपर जितने मतदार हैं उन कैंडिडेट्स हैं उनमें से कोई नहीं चाहिए। ये प्रतिशत में जब सुनते हैं तो बड़ा कम लगता है। मैं अभी इसी प्रतिशत को वोटों में कहता हूँ। छत्तीसगढ़ में 282,000, मध्य प्रदेश में 542,000, मिजोरम में 2,900, राजस्थान में 4,67,000, तेलंगाना में 2,24,000, कुल मिलाकर 15,20,446 लोगों ने नोटा का उपयोग किया। 15,20,000 लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ? मिजोरम में सभी पार्टियों को कुल मिलाकर जो मत मिला, वोट मिला, वो सिर्फ 6,28,000। एक मिजोरम प्रदेश में जितने वोट मिले सभी कैंडिडेट को, उससे दुगुना लोगों ने, मतलब 15,20,000 लोगों ने नोटा का उपयोग किया। क्या ये सही है? क्या डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट चूजिंग द बेस्ट, डेमोक्रेसी इज चूजिंग द बेस्ट अवेलेबल। डेमोक्रेसी का मतलब सबसे बढ़िया व्यक्ति चुनना नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब जो उपलब्ध है उनमें से बढ़िया चुनना। क्या इन 15,20,000 लोगों ने ये काम किया है? और अगर ये 15,20,000 लोग किसी दल को चुनते, हो सकता था कि बीजेपी की जीत होती मध्य प्रदेश में, हो सकता था कि बीजेपी की जीत होती राजस्थान में, हो सकता था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की इतनी बुरी हार नहीं होती। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को, सुप्रीम कोर्ट को और इलेक्शन कमीशन को नोटा के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। और केवल नोटा के बारे में नहीं, अगर हम लोकतंत्र का विचार करते हैं तो जिस प्रकार का अधिकार लोगों को दिया है नोटा का, उसी प्रकार का अधिकार एक दृष्टि से राइट टू रिकॉल को भी देना चाहिए। मतदाता और वोटर को यह अधिकार भी होना चाहिए कि जिस प्रकार हम हमारे प्रतिनिधि को चुनकर देते हैं, उसी प्रकार अगर हमारा प्रतिनिधि मेरा काम नहीं कर रहा है तो उस प्रतिनिधि को फिर एक बार वापस बुलाने का भी अधिकार मेरे पास होना चाहिए। ये राइट टू रिकॉल के बारे में जयप्रकाश नारायण जी ने विषय उठाया था, परंतु ये विषय उसके बाद 1977 के बाद चर्चा में नहीं रही। इस विषय को फिर एक बार चर्चा में लाना पड़ेगा। एक जागृत मतदार होना चाहिए, वोटरों को जागृत होना चाहिए, परंतु नोटा का दुरुपयोग अगर होता है तो इसका घाटा सभी राजनीतिक दलों को कल, आज नहीं तो कल होगा। इसका विचार भी सभी राजनीतिक दल करें, यह अच्छा रहेगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।